डाक आंदोलन तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की तब तुम्हारा विभव ऐश्वर्य खलु निसंदेह भगवान हे श्री भगवान जगत दृश्य जगत का उदय सृष्टि स्थिति पालन नय आदनी संहार इत्यादि विश्व सजा दृश्य जगत के कर्ता ते वे अंश अंशा आपके अंश के भी अंश स्वरूप
ईश्वर या दृश्य जगत तथा इसकी उत्पत्ति पालन अनुसंधान ये सभी आपके ऐश्वर्य हैं। क्योंकि ब्रह्मा तथा अन्य कर्ता निर्माता आपके अंश के भी अंश हैं, अतः सृष्टि करने की उनकी आंशिक शक्ति उन्हें ईश्वर नहीं बना सकती। वो भी अपने को पृथक ईश्वर मान बैठना उनके अहंकार का द्योतक है, यह रहते नहीं है। भगवान की शरण में आया हुआ भक्त यह अच्छी तरह जानता है कि ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक समस्त जीवात्माओं में सृजन शक्ति इसलिए है क्योंकि वे ईश्वर के भिन्न अंश हैं। भगवद गीता 15:7 में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे मनुष्य जीव लोके जीव भूता सनातना। इस बात जगत में जीवात्माएं मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। जीवात्माएं परमात्मा के लघु अंश रूप हैं, मानो आपकी चिंगारियां हो। परमात्मा के अंशमात होने से उनमें सृजन शक्ति अत्यल्प रहती है। आत्म जगत के तथाकथित वैज्ञानिकों को गर्व है कि उन्होंने वायुयान जैसी आधुनिक सुविधाएं उत्पन्न की हैं, किंतु उनका श्रेय श्री भगवान को ही मिलना चाहिए। पहली विचारणी बात है वैज्ञानिकों की बुद्धि। मनुष्य को भगवान के आदेश से ऊपर उठना होता है, क्योंकि भगवान 15:15 भगवद्गीता में उनका वचन है, माता स्मृति ज्ञान रखो मनोचर, उसी से स्मृति ज्ञान तथा स्मृति उत्पन्न है। परमात्मा का देह जीवात्मा के हृदय में स्थित है, अतः जिस प्रेरणा आदेश से कोई मनुष्य वैज्ञानिक ज्ञान में या सृजन शक्तियों में आगे बढ़ता है वह उन्हीं को ईश्वर से प्राप्त होती है। यही नहीं, जिन अवयवों से वायुमान जैसे अद्भुत यंत्रों का निर्माण होता है वे ईश्वर की देन है, वैज्ञानिकों की नहीं। वायुमान बनने के पूर्व इसके सभी अवयवों की सामग्री पहले से श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की जा चुकी थी, किंतु जब वायुयान वायुयान विदाई होता है तो इसका मलबा मांसावेश तथा सृष्टिकर्ता को भी समस्या बन जाता है। एक अन्य उदाहरण है पाश्चात्य लोगों द्वारा स्वचालित वाहनों का निर्माण। इन मोटर कारों के सभी अवयव तथा इनकी सृष्टि के लिए आवश्यक बुद्धि ईश्वर द्वारा प्राप्त होती है। अंत जब ये कार्य नष्ट होती है तो तथाकथित सृष्टाओं के समक्ष समस्या खड़ी होती है कि इन अवयवों का क्या हो, इसकी इनका वास्तविक तथा आदि सृजन करता तो भगवान है। कुछ काल में ही ईश्वर द्वारा गलत बुद्धि से लोग कुछ वस्तुओं का सृजन करते हैं, बाद में यह सृष्टि आग बन जाती है। अगर तथा कथित सृजनकर्ताओं को सृष्टि कार्य का श्रेय नहीं मिलना चाहिए, सारा श्रेय श्री भगवान को जाता है। इस श्लोक में यह उचित भी कहा गया है कि सृष्टि पालन तथा संहार का सारा ऐश्वर्य ईश्वर का है, जीवात्मा का नहीं। ओम
Thank you. वक्त जो प्रतिदिन आ रहे हैं वो
प्रतिदिन नहीं आते, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या समझ आ रहा है। ये जो गाथा है ये चित्र के थ्रू महाराज के द्वारा की गई है, भगवान संघर्ष में संघर्ष। जैसा कि आप जानते हैं चित्र के थ्रू की कथा, 1 करोड़ की रानियां थी, सभी 5 थी। कबीरा ऋषि की कृपा से कोई पुत्र की प्राप्ति हुई, बाकी जितनी रानियां थी उस बड़ी रानी से पेश हो गए कृतज्ञ से, और उन्होंने उस बच्चे का हत्या कर दी। और जब बच्चे की हत्या करी तो चित्र के थ्रू भारी शोक में चले गए, और फिर वहां पर प्रकट होते हैं कर्मावश धारण होने वाले कबीरा ऋषि, और उनको सत और सत का ज्ञान देते हैं, आत्मा और शरीर का भेद बताते हैं। लेकिन तब इस चित्र को तो महाराज का शोक मूल रूप से दूर नहीं होता। फिर नारद मुनि जी अपनी योग शक्ति के द्वारा उस मृत पात्र को जीवित कर देते हैं। जब मृत पात्र जीवित हो गया तो आप देखिए बच्चा बाल बला जो मर गया जीवित हो गया, और जीवित होने पर उसने उपदेश दिया। तो नारद मुनि बोला जी माता तुम कहां चले, तुम्हारे पीछे देखिए तुम्हारे शोक में माता पिता कितना विलाप कर रहे हैं। तो ये आत्मा ने क्या बोला, कौन से माता पिता किस जन्म के माता पिता की बात कर रहे हैं, किसी को नहीं जाना। तो यह सुना तो राजा चित्रकेतु का शोक दूर हो गया। फिर नारद ने जो कृपा वर्ष करके राजा चित्रकेतु को मंत्र दी कि मंत्र का उच्चारण करो, और राजा चित्रकेतु ने केवल 7 दिन घोर तपस्या करके नारद मुनि के आदेशानुसार मंत्र का उच्चारण किया। 7 दिन में ही उनको प्राप्ति हो गई, 7 दिन हो गई लाइफ जीवन बदल गया। 7 दिन में जैसे उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया वो पहले विद्याधरपति बने, विद्याधर लोक में गए, और कुछ ही दिनों में वैकुंठ चले गए। तो जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो अब उनके लिए बड़ा कठिन हो रहा था, भगवान से क्या अचानक किसी 7 दिन के बाद भगवान के दर्शन हुए साक्षात। तो वो इतने भावेश में आ गए कि आपने सशु निकल गए और आंखों का सुन गए, और जो भगवान जहां खड़े थे भगवान के चरणों का अभिषेक किया उन्होंने अपने अश्रुओं से, और फिर उन्होंने उनको संभाला और प्रार्थनाएं शुरू की। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की प्रार्थना करने के लिए जब तक हम अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे हम सही रूप से भगवान का गुणगान नहीं कर सकते। यानी कि बिना तपस्या के हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते। जब तक हम तपस्या नहीं कर रहे होंगे, मन और इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास नहीं कर रहे होंगे, हम भगवान का सही ढंग से गुणगान नहीं कर सकते। और जिसने मन और इंद्रियों को संयमित कर लिया उसे परमात्मा को जीत लिया। जिसने मन को जीत लिया उसे परमात्मा को जीत लिया, और फिर वो भगवान का गुणगान कर सकता है। तो फिर क्योंकि राजा चित्रकेतु ने 7 दिन जो है मन और इंद्रियों को संयमित किया और अस्थि भगवान को बुद्धि प्रदान की और उन्हें भगवान को भगवान शुरू किया। तो अभी उनके भगवान की दूसरी प्रार्थना है, इसे श्लोक में उन्होंने भगवान शुरू किया। इस श्लोक में बताया जा रहा है तब रेखा अनु भगवान नगर कुदरपति मैलान हो गई विश्व से अंश अंश किया। विकेशन भागवतम में बहुत से भक्तों ने भगवान से बात है, बहुत से भक्तों को भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। तो महाराज ये 6 महीने तपस्या की उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, राम महाराज को नरसिंह भगवान का दर्शन प्राप्त हुए, उनकी महान की प्रार्थनाएं हैं। इसके अलावा जब भगवान से किसी को हम कर लेते तो देवता भवन में हमें प्रार्थनाएं की। जितने भी प्रार्थना है श्रीमद भागवतम में हम देखते हैं हर प्रार्थना में एक चीज कॉमन है, एक प्रार्थना सभी भक्तों में प्रार्थना में प्रार्थना खाली यही है कि हमें नामे होते हैं। प्रार्थना का सभी पहले भाग होता है कि भगवान का कहीं गुणगान करें, तो एक गुणगान करते ही भक्त ने किया है। जितने भी भागवत में प्रार्थना है कह रहे हैं वो हर भक्त ने यह कहा कि हर सृष्टि की व्यवस्था आप ही है, ये जानना बहुत जरूरी है। बेसिक पहले हमें भगवान की सृष्टि को ही धन्यवाद देना चाहिए, आपने सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि की व्यवस्था आप ही है। हम ही करते हैं भगवान के दर्शन होते हैं, क्या बोलते हैं हमारी प्रार्थना धर्म से दर्श होते हैं, और हमारे भविष्य धर्म हम होते हैं। यदि आप बहुत जरूरी है कि आदि पुरुष आप ही हैं, कि भगवान को नंगा शक्ति का भाव में आकर हम अपने आप को पुरुष माना शुरू कर सकते हैं, और कहीं आदि पुरुष माना शुरू कर सकते हैं कि सब कारण कारण हम ही है। तो पहले ये प्रार्थना है कि मोदी हमारे पुरुष का नाम होना, प्रत्येक भाव में सबसे पहली प्रार्थना ये आप इसी शुरू कर सकते हैं।
चींटी का समाज जीवात्मा में सजन शक्ति इसलिए है क्योंकि ईश्वर के वो भिन्न अंश है। हमारे जो भी शक्ति है, जो भी योग्यता है, ब्रह्मा जी से लेकर छोटी चींटी तक, एक छोटी चींटी भी दिल बनाती है, ब्रह्मा जी भी सृष्टि की रचना करती है, मनुष्य भी मन में भूमि बनाता है, स्पेस का बनाता है, सैटेलाइट बनाता है, जो भी इसके अंदर योग्यता है सृष्टि करने की वो इसलिए है क्योंकि वो हमारे भिन्न अंश है। तो इसलिए चित्र में तुम्हारा आराधना करें खलु निश्चित रूप से ही यह दृश्य जगत इसकी सृष्टि इसका पालन इसका संहार ये सब आपका ऐश्वर्य है। इस संसार में जो कुछ दे रहा है वो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य है। और चूंकि ब्रह्मा का आने करता आपके अंश के अंश है, अंश नहीं है, अंश के अंश है, अगर सृष्टि करने की उनकी आंशिक शक्ति उन्हें ईश्वर नहीं बना सकती। अगर कोई अपने आप को सृष्टि करता मान रहा है तो दृष्टा ही मिथ्या मिथ्या अहंकार है, और ये कहते हैं इज नॉट वैलिड प्रो पाने के। और इसी कारण अगर हम अपने आप को सृष्टि करता मान रहे हैं या हम क्रेडिट दे रहे हैं तो करें स्पृथा भौतिक जगत में स्पृथा शुरू हो जाती है, कॉम्पिटिशन शुरू हो जाती है। अध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर यही है कि अध्यात्मिक जगत में केवल एक ही पोजिशन है, वहां कॉम्पिटिशन नहीं है, और भौतिक जगत में सब कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, स्पृदा है, हर कोई अपने आप को राजा मान रहा है, हर कोई अपने आप को स्वामी मान रहा है, हर कोई अपने आप को कर्ता मान रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, और कॉम्पिटिशन है इसलिए यहाँ पे द्वेष है। भौतिक जगत में कोई कॉम्पिटिशन नहीं, एक राज कृष्ण आज सब सकते, कोई डिस्प्यूट नहीं है कि भगवान कौन है, यहाँ पे बहुत डिस्प्यूट है कौन भगवान है, हर कोई अलग भगवान मान रहे हैं, इंडिया में लड़का रहता है आज करके नंबर वन भगवान साई बाबा चलते हैं, कुछ साल बाद कुछ और हो जाएंगे, हमें याद आते तीस साल पहले बचपन में संतोषी माली भगवान थे, सुपर हिट संतोषी माली, उसके बाद महाकाली आए भगवान बनते रहते वहां सुपर हिट भगवान साई बाबा है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है कौन भगवान है, कोई बोलते नहीं भगवान सब जगह कंफ्यूजन करा हुआ है, श्री कृष्ण को कर दिया पीछे तीन में हिंदू हुआ बरदास में 28 भगवानों को इकट्ठा कर दिया और सब चर्चा कर रहे हैं नया भगवान नया भगवान हम फ्रेंड्स आए तो अकाली जगत में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है कौन भगवान किस सृष्टि दर्शन श्री तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं सोते सोते योग निद्रा में सोए और सृष्टि की रचना हो गई, यहाँ एक छोटा ऑर्ग की फैक्ट्री लगानी पड़े कितना मतलब कि आप देखिए मेहनत करनी पड़ती है, बड़े बड़े मशीनों को इम्पोर्ट करना पड़ता है, स्वादन ने भी एक स्वीट बनाने की मशीनें इम्पोर्ट की थी और उनको बड़ा क्रेडिट मिला था और औद्योगिकरण कर दिया भारत एक छोटी स्वीट बनाने के लिए और वहां सृष्टि की रचना भगवान सोए सोए कर रहे हैं, व्यस्त विश्व कारोबार हमने जीवन को गंध लाता विष्णु महान का यस्य कला विशेषो गोविंद माधि पुरुषम तमाम जिनकी एक श्वास मात्र से ही जगत कोटि जो कि ब्रह्मा जी का पूरा जीवन महाविष्णु के श्वास मात्र है और ये श्वास देने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड एक श्वास की अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए और जब तक श्वास वापस लेंगे ब्रह्मा जी का पूरा जीवन कितना जीवन है ब्रह्मा जी का 311 खरब ये महाविष्णु जी की एक श्वास है। हमारा रेस्पिरेशन रेट क्या है हम लोग एक मिनट में 78 बार लेते हैं हम कितनी बारी सांस लेते हैं एक मिनट में हम 72 बारी सांस छोड़ते हैं जैसे और महाविष्णु जी कितना करते हैं एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस का वापस लेते हैं 311 खरब सांस निकल जाते हैं उसके बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि हो जाती है हम उसके कारण कितने जन्म लेते हैं कितनी जोड़ी में बैठ जाते हैं भगवान का ऐश्वर्य सृष्टि करने के लिए और घर बिल्कुल योग निद्रा में और भगवान को सृष्टि करने के एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ते हैं ये कभी फील हो गया वो दोबारा से फील करें थॉमस एडिसन एक बार खोजने के लिए 8000 बार ट्राई किया 8000 बार ट्राई करने के बाद छोटा सा बल बना है उसको कितना क्रेडिट कर दिया भगवान ने अनंत कोटि सूर्यों की रचना कर दी बस सांस लेते क्या ऐश्वर्य सोते सोते तो कुछ नहीं है और भगवान की जो सृष्टि है असीमित है असीमित देखिए वृक्ष में कितने पेड़ है कितने पत्ते हम गिन नहीं सकते हमारे शरीर में कितने बाल हम गिर नहीं सकते, गंदे के शरीर में बहुत बाल होते हैं, फिर भी नहीं सकते कितने बाल है, बाल काटो फिर आ जाते हैं, नाखून काटो फिर आ जाते हैं, काम कैसा इस पर है। और एक व्यक्ति का लंजा हो जाए उसकी सुंदरता खराब हो जाती है, वो आर्टिफिशियल हेयर इम्प्लांट कराता है, बड़े इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, किसी ने बताया है एक बार किसान बीस पर ही मिलाना पड़ता है, बहुत पावर बनने पड़ते हैं, बहुत ही निकलदायक प्रोसेस है। हमारे पास अंदर बिल रोड पर ही है दुकान है, आर्ट ऑफ हेयर बाल कैसे उगाए, बहुत बड़ी खेती करना बहुत मुश्किल है, बंदे सर पे बाल इंजेक्शन लगाते हैं, मेडिसिन देते हैं, टेस्ट लगाते हैं, कट करके दो तीन बार उठते हैं, हमारे पास सीमित बात नहीं, ऊपर से नीचे से बात ही बात है, काटो फिराए जाते हैं, काटो फिराए जाते हैं, क्या सृष्टि है, गाय घास खाते दूध देती है, अजीब सी सृष्टि है, देखिए कितना ईश्वर है। और ये भगवान ने बड़े आराम से उत्तर पूर्ण रूप से ओम मंगला पूर्ण मृदम पूर्णा पूर्ण निश्चित पूर्ण रूप से इस सृष्टि में सबकी सब सुविधाएं दी गई है। भगवान का एक छोटा सा भगवान अर्जुन को बताते हैं जो देख रहे हैं तो केवल अंश मात्र है, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी भगवान कह रहे हैं, क्या बताऊंगा अर्जुन अपने अंश मात्र से मैं सब जगह व्याप्त हूं, ये तो बहुत अंश मात्र है, कितना वर्णन करो। भगवान बुद्ध को बोलते हैं कि मैं वैसे तो अनंत शेष जी अनंत काल से भगवान के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, आपको मालूम है जैसे सृष्टि रचना हुई अनंत शेष जी ने पूरे ब्रह्मांड को अपने सर पर लिया, कब तक धारण कर रहे हैं, भगवान बोला जब तक मेरे गुण का गुणमान खत्म नहीं होगा करते रहो, तो बेचारे अनंत शेष जी अभी तक कार्य नहीं है, तभी तो उनके सर पर पड़ा हुआ है, और कार्य कर रहे हैं ब्रह्मांड में सर पर किसके नारी के सम्मान, सारे सारे बड़े बड़े ब्रह्मांड एटम जी बनाए भगवान के, तो इतने ब्रह्मांडों की रचना कर दी, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसका गुणगान काउंटिंग नहीं कर सकते, स्वयं अनंत शेष जी नहीं कर सकते, भगवान बुद्ध को बताते हैं कि मैं सृष्टि में जितने अणु हैं उनको गिन सकता हूं, लेकिन मेरा कितने गुण है उसको मैं नहीं गिन सकता, भगवान खुद कह रहे जैसे बहुत धन है पता नहीं कहां का मेरा अकाउंट है, इतना धन है, इतना धन है मुझे पता नहीं, कितने ऐसे मालूम है, ऐसे भगवान का इतना ऐश्वर्य, भगवान खुद कहते हैं मैंने ज्यादा मेरे कितने ऐश्वर्य, तो ये भगवान के सृष्टि के ऐश्वर्य, कि भगवान का सृष्टि अद्भुत सृष्टि है, जिसे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि एक एक बीज होता है, एक बीज के अंदर पूरा वट का वृक्ष समाया हुआ है, और एक बीज को पानी में जमीन में डाला ऊपर से पानी आया और पेड़ निकल गया, कोई भी ऐसा नहीं करता, सुंदर था उसमें से फूल निकल गया, उसमें कितनी सुगंध है, कितने सुंदर रंग है, इतना सब कुछ प्रकृति के द्वारा किया हुआ है, भगवान की सृष्टि के ऐश्वर्य, इसका भगवान कैसे पालन करते हैं, हमारी धन सृष्टि करके छोड़ दीजिए पालन करते हैं, हम लोग जो भगवान की शक्तियों की विशेषता क्या है, पराशी शक्ति विभिन्न स्वयं स्वभाव की ज्ञान बल की आश चल, भगवान को जब सृष्टि करते हैं प्रभाव करते हैं, यानी कि सृष्टि करने के लिए भगवान को बहुत कंप्यूटर्स होंगे, बहुत बड़ा कंट्रोल होगा, चलो आवाज 24 घंटे है ना, ऑनलाइन अपडेशन पर होगा, ये नहीं वो नहीं सब सारे लोगों को नीचे पड़े तो नीचे कारखाना होगा, बड़ी बड़ी मशीन होगी, 24 घंटे काम चल रहा होगा, तब जाके कोई सृष्टि कर सकते अपनी शक्तियों के बस की अपनी शक्तियां, और भगवान की शक्तियों के अंदर भी शक्तियां हैं, हम लोग भगवान की शक्ति नहीं, भगवान की शक्ति की विशेषता है कि शक्ति के अंदर भी शक्तियां हैं, कैसी शक्ति स्वभाव के ज्ञान पर क्रियाशील, जितने भी ये भगवान की शक्तियां हैं उनके अंदर ज्ञान शक्ति है, उनके अंदर बल शक्ति है, उनके अंदर क्रिया करने की शक्ति है, और इसी के कारण हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और हम अपने शक्ति अपने आप को शक्तिमान समझना शुरू कर देते हैं, हम लोग भगवान की शक्ति है, तटस्था शक्ति है, और ये भगवान की जो दिव्य शक्ति को ये प्रदत्त शक्ति है कि हम क्रिएशन कर सकते हैं, जैसे एक प्रोपेलर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी कंपनी में जनरल मैनेजर, तो जनरल मैनेजर का कुछ शक्तियां है, तो जनरल मैनेजर उस प्रोपरेटर की शक्ति है, लेकिन अपने आप जनरल मैनेजर में काफी शक्तियां हैं, जनरल मैनेजर में जो सीनियर मैनेजर है उसके अंदर अपने अंदर कुछ शक्ति है, और सीनियर मैनेजर जनरल मैनेजर की शक्ति है, तो इस बहुत ही अगर हालत के अंदर इसमें भी एक शक्ति के अंदर भी कुछ शक्ति होती है, इसी तरह से भगवान की जितनी भी शक्ति है उनके अंदर की प्रकार की शक्ति है, ज्ञान शक्ति बल शक्ति क्रिया करने की शक्ति, लेकिन ये भगवान की अद्भुत प्रकृति है कि शक्ति अपने आप को शक्तिमान माना शुरू करती है। लेकिन पूर्ण रूप से भगवान की शनागत होते हैं वो कभी नहीं भूलते कि मैं शक्तिमान नहीं शक्ति हूं। श्री प्रभुपाद कहते हैं भविष्य जीवन की सिद्धि इस बात में है कि अंततः हमें ध्यान जाए हम पुरुष नहीं हम स्त्री हम पुरुष नहीं हम प्रकृति है, इसलिए हम कभी नहीं लाते हैं गोविंद माफी पुरुष ये बोल हम कर बैठते हैं हम अपने पुरुष हो सकते क्योंकि अगर मैंने सृष्टि की है तो मेरा अधिकार है इसको उपभोग करने का, क्योंकि मैंने सृष्टि की है मेरा अधिकार है इसको नियंत्रण करने का। माता पिता के अंदर ये शक्ति भगवान बदल करते हैं, पुरुष के वीर्य के अंदर भगवान की आत्मा डालते हैं, माँ को गर्भ धारण करने की शक्ति भगवान प्रदान करते हैं और फिर देखते हैं पुरुष और स्त्री के सहयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन उस संतान को पालन करने के लिए एक माता और पिता को इतना संघर्ष करना पड़ता है कि सब जानते हैं और भगवान की कितनी संतान है कि भगवान भी हमारे साथ संघर्ष कर रहे नहीं भगवान का यही हो भगवान का संतान की उत्पत्ति करते हैं। एक हो यह बहुत श्याम अनंत धूप से भगवान का विस्तार किया और जो भगवान की आज्ञा की संतान है भगवान के साथ आनंद उठा रहे हैं, जो भगवान की आज्ञा की अवहेलना करते हैं भगवान उनका भी ध्यान रखते हैं और पूरी सृष्टि में विद्यमान है परमात्मा के रूप में और हम सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। नित्यो नित्य नाम चेतो चेतन नाम एक हम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं सब जीवात्माओं की। आपको लगता है भगवान इच्छा की पूर्ति करते हैं सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं बोलो साफ साफ बोलो भगवान के साथ जिसको कह नित्य नित्य नाम ये सुचेत नाम देखो भगवान विद्या की कामान हमारी जितनी इच्छाएं भगवान पूरी करते थे परमात्मा को निर्णय बैठे हैं। तो आप में से कितने भक्तों को लगा कि भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं अधिकांश में देखते हैं मेरी इच्छा रह गई अभी तक मैं देखो मरीज फ्लैट में पड़ा प्रमोशन नहीं हुई दूसरों की बड़ी मेरी इच्छा थी मेरी इच्छा थी मेरी हेल्थ ठीक हो जाए हेल्थ ठीक नहीं हो रही मेरी इच्छा थी मेरे कुछ गैस मुझे बिल्डिंग मुझे पहचाने नहीं मैं कौन हूँ मेरी इतनी इतनी इच्छाएं वो कहाँ पूरी हो रही तो प्रभुपाद जी पिछले बात करें बहुत सुंदर बात है मतलब जीवात्मा के अंदर इच्छाएं तो होंगी होंगी अलेकन की कहना इतने विदाउट डिजायर बट डिजायर दैट कैन नेवर बी फुलफिल्ड काम ऐसी इच्छाएं जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती वो काम कहलाती है। तो हमारी जो कामों इच्छाएं हैं भगवान उसको पूरा नहीं कर सकते करेंगे भी नहीं अगर आप यहां पर राजा बनना चाहते हो पॉसिबल ही नहीं है आप भगवान फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे कोशिश कर लो राजा बनने बन नहीं सकते बहुत ही जगह पे केवल हमारे प्रकृति में छूटा अटैम्प छूटा मतलब कि हमारे असफल प्रयास की कहानी है और कुछ नहीं भोक्ता बनने के असफल प्रयासों की गाथा है। हम लगे रहेंगे भगवान हमें सारी सुविधाएं प्रदान करते रहेंगे कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो लेकिन ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती वो काम वासना है। इसके अलावा आप कोई भी अगर इच्छा करें भगवान तुरंत पूछे तुरंत पूरी करेंगे इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए किस तरह की इच्छाओं को हम विकसित करें। तो फिर जैसे भी भगवान बताते हैं कृष्ण बाबा कामो सर कामो का मोक्ष कामा उठाती तीन कमीशन पर अब हमारी बहुत ही इच्छाएं भी हैं किसी न किसी रूप से भगवान की कृपा से भक्ति करते हैं हमारी इच्छाएं भी शुद्ध हो जाती है और हम भगवान की शरण प्राप्त होती है। तो भगवान पालन करने के लिए अंश अंश में विद्यमान होते हैं कर्म कर्म में विद्यमान होते हैं अंदर तरस्तम परमाणु चय तरस्तम क्योंकि भगवान जानते हैं कि जीव पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित है पूर्ण रूप से इसलिए भगवान कर्ण करने विद्यमान अगर भगवान कर्ण करने विद्यमान ना हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान गीता बता रहे रामावेशी में होता नहीं दहाड़ में बहुत सब कुछ नाम सोचती सर्वस्व बहुत पर सारे के सारे ग्रहों में भगवान प्रवेश करते हैं हमारे सारे घर मिल जाए ऐसे वो प्रोट कर रहे हैं तो आप कहते हैं जैसे एक रेल पावन झुकी ने पकड़ लिया तब तक रेल कटी है छोड़े तो रेल गिर जाएगी तो सारे सारे ग्रहों को भगवान धारण कर रहे हैं और चंद्रमा बनकर भगवान जितने भी वनस्पति है सब्जियां उनको रस प्रदान कर रहे हैं। भगवान इतने सुखद पालन करते हैं कि
कि भगवान हमें खाद्य सामग्री प्रदान कर रहे हैं, खाद्य सामग्री को उपयोग करने के लिए अग्नि का तेज बन रहे हैं, अग्नि भगवान की शक्ति है, और जब उसको खाते हैं हमारे उधर में वैष्णव गांधी बनकर उसको बचाते हैं, इससे अच्छा हमें पालन करना मिलेगा। माँ अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती है, इसके लिए भोजन बना देगी, उसके पेट में उसका धन भी बचा सकती है, और हमें ज्यादा करें तो मेडिकल तबियत खराब हो जाती है। लेकिन परमात्मा है वो भोजन भी देते हैं, भोजन बनाने के लिए अग्नि भी देते हैं, और फिर उधर में जाकर उस भोजन को बचाते भी, ये भगवान पालन करते हैं। और भगवान कैसे पालन करते हैं, अगर भगवान की शरण ले तो भगवान अपने सारे गुण अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। इस संसार में कोई स्वामी ऐसा है जो अपने सारे के सारे गुण अपने सेवकों को प्रदान करते हैं, और भगवान एक ऐसे स्वामी है जो कि अपने सेवकों को बिल्कुल अमर बना सकते हैं। इस संसार का कोई भी स्वामी अपने सेवकों को अमर नहीं बना सकता। फिर भगवान का पालन करने का ऐश्वर्य गीता में कहते हैं, मया तथा विक्रम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, अपने अव्यक्त रूप से भगवान इस पूरी सृष्टि में विद्यमान है, पूरी सृष्टि में। तो ये भगवान के पालन करने का ऐश्वर्य, हालांकि भगवान सृष्टि के कण कण में है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मैं सृष्टि से बिल्कुल अलग हूं, पश्चिम योग ऐश्वर्य, देखो मेरा ऐश्वर्य। केवल भगवान ही एकमात्र ऐसे पुरुष है जो कि बोलने डिक्लेयर कर सकते हैं ये मेरा ऐश्वर्य है, इस संसार में कोई धर्मान नहीं कह सकता देखो मेरा ऐश्वर्य, इनकम टैक्स वाले पकड़ने में उसको छुपा के रखना पड़ता है ऐश्वर्य। ये भगवान बोल नहीं करते हैं पश्चिम योग ऐश्वर्य, मेरा ऐश्वर्य देखो, और इनका कुछ भी नहीं है अंश मात्र है। तो भगवान पूरी सृष्टि में विद्यमान भी है और पूरी सृष्टि से अलग भी है, ये उनका ऐश्वर्य है। और भगवान अपने जीवात्मा का पालन भी करते हैं, और कुछ जीवात्माएं अगर भगवान से विमुख होना चाहती हैं तो भगवान बोले देते हैं, वो कह रहे हैं तेरे सृष्टि के अंदर कहां छोड़ के जा रहा है, तेरे लिए मैं कण कण में बसा हूं और मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये भगवान का वैराग्य का ऐश्वर्य है, तुम्हें भूलना चाहते हो भूल जाओ, तुम्हें याद करना चाहते हो याद करो, पूर्ण रूप से अनासक्त भगवान के पालन करने का। तो अगर हम एक शुद्ध भक्त की सोच बिल्कुल भगवान के विचार के अनुसार होती है तो हमें भी कैसे होना चाहिए, अगर हम भगवान के द्वारा हमें शक्ति प्रदत्त की गई है, हमने तो सृष्टि रचना की, लेकिन हमें पूर्ण रूप से उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, हम पूरा उसमें आसक्त है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी सृष्टि है, ये मेरी संतान है, जैसे मैं चाहता हूं वैसे आप भगवान का वैराग्य का ऐश्वर्य रखिए, सारे जीवों को उत्पन्न करिएगा प्रेम वश कामवश नहीं, हम तो संतान की उत्पत्ति करते हैं कामवश, हम संतान की उत्पत्ति करते हैं कि वो हमें आनंद प्रदान करे, हम संतान की उत्पत्ति करते हैं वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे, मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैं लग रहा कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, हमें करते वो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो हमें कितना दुख होता है। और देखिए हम भी भगवान की संतान है और हम भगवान की इच्छा के साथ नहीं चलते तो भगवान हमें चलने देते और पूरी सुविधाएं प्रदान करते हैं, ठीक है प्रेम और जब तक तुम्हें शरण में नहीं आओगे मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। भगवान का वैराग्य का ऐश्वर्य, भगवान का पालन करने का एक भगवान का तरीका है, इनका ऐश्वर्य। फिर भगवान संघार संघार करना है भगवान का ऐश्वर्य, जाएगा कैसे भागवत के दूसरे और तीसरे स्कंध में जाएगी सृष्टि की रचना कैसे होती है, पूरी पूरी सृष्टि की रचना जो है अहंकार से शुरू होती है, सृष्टि के प्रारंभ में सब शुद्ध चेतना थी और शुद्ध चेतना से भगवान की शक्ति द्वारा झूठा अहंकार उत्पन्न होता है, झूठा अहंकार क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करते हैं, स्वतंत्रता का गलत उपयोग करते हैं तो फॉल्स ईगो झूठा अहंकार हम अपने आप को इस शरीर से बनना शुरू करते हैं, तो उससे पूरी सृष्टि की आगे रचना शुरू होती है, इस झूठे अहंकार से मन बुद्धि इंद्रिया इंद्रियों के विषय सब उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे पूरी सृष्टि का विकास होता है। जितना भी इस संसार में ये साइंटिस्ट लोग तरक्की कर रहे थे गोपाल तो हैं ये सब हमारे झूठे अहंकार के भी व्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉलिसी को इसी पॉलिसी को कारण इस सारा का सारा मेटीरियल एडवांसमेंट है, केवल पॉलिसी और कुछ नहीं दुखापन। तो जब सृष्टि का विलय होता है प्रलय होती है तो क्या होता है, जो स्थूल तत्व है वो सूक्ष्म तत्व में मिल जाता है, भूमि पानी में, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, ये सब मिल जाते हैं, और इस ढंग से क्रॉस से सटल होते होते सब सबका सब माइंड अप होके सब महाविष्णु के हो गए। यहाँ रूपा बता रहे आपने वायुयान बना दिया, वायुयान बनाने के बाद जब उसका मलबा बचता है, जब वो खराब हो जाता है तो क्या होता है, पड़ा रहता है। ऐसे भी अमेरिका में ऐसे कितने शहर हैं जो कि इस समय बहुत बड़ी समस्या बन गए, गार्बेज डिस्पोजल जिसको कहा पहाड़ के पहाड़ बन गए गार्बेज। कौन सी सिटी है वो, बेंगलोर में सिलिकॉन सिटी कह जाते हैं, चिप्स की चिप्स पड़ी है, कहाँ उसको डिस्पोजल है। इतना जिसे कहते हैं पूरे एनवायरमेंट के लिए प्रदूषण का इतना बड़ा तरीका है, लेकिन भगवान क्या करते हैं सबका सब अपने अंदर संभाल सकते हैं। साइंटिस्ट लोगों को बोलो जिसने कार जिसने राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन भी बनाया था, उनका एरोप्लेन खराब हो गया, मन लगा सबका सब उसके अंदर वाइंड अप होगा, राइट ब्रदर्स को कहीं वाइंड अप होगा कहां से कहीं पता नहीं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जो साइंस वैज्ञानिक लोग सृष्टि की रचना कर रहे हैं वो सृष्टि बाद में समस्या बन जाती, सबके सब समस्या बनी। तो बात बोला ये सारे एरोप्लेन यूजलेस है, इम्पोर्टेंट से यूजलेस है, आप लोग ट्रेवल करते हो प्रभु कहते हैं नहीं यूजफुल, इसको यूजफुल बनाते हैं यूजलेस। देखे लिए पक्षी उड़ रहे हैं उसको देखकर कोई नहीं देखा कि भगवान ने क्या बनाया, देखो पक्षी है, पक्षी उड़ के बोले अचानक उड़ जाते हैं, एक एरोप्लेन को उड़ने के लिए क्या बड़ा कंप्यूटर होता है, ढूंढना पड़ता है उसको, टेक ऑफ करते हैं इतने धक्के लगते हैं, लैंडिंग करते हैं इतने धक्के लगते हैं। प्रॉपर एक बार जा रहे थे कहीं विमान में बैठ के, तो वो टेक ऑफ करने लगा तो वो एयरबस से दिखा रहे थे ये करो वो करो बैठ मांग नहीं मांग, प्रॉपर मेरे को इसकी परवाह नहीं, प्रॉपर ने अपने बोला सिखो बोलो आई वॉन्ट टू बैट दिशा बेचारे सारा प्रसाद बढ़िया से खाली लेकर गए हैं और एयरसेस बाकी कुछ कह नहीं पाए, बाकी सब लोग यूं करके सीट बैट ट्राई कर रहे हैं, प्रभु आराम से प्रसाद पा रहे हैं, उस सेवक लेके एरोप्लेन जब चलते हैं कितने चले तो ग्लास एक तो जब जब देख रहे हैं प्रभाव का ऐश्वर्य प्रभा देखा हो रहा है फ्लाइट आराम से प्रसाद पा रहे हैं, एक दूसरा से हम लोग इसको यूजफुल बना रहे। तो ये हम लोग सृष्टि करते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है, कहां डिस्पोज ऑफ करें। जब शुरू में 80s में प्लास्टिक आया था, मतलब बहुत बड़ी क्रांति आ गई, प्लास्टिक आ गए, प्लास्टिक हर चीज इतनी हल्की फुल्की हो गई और देखो कितनी एनर्जी सी हो गई, प्लास्टिक आ गए, देखो प्लास्टिक अब क्या करें कहां डिस्पोज ऑफ करें, इतने बड़े प्रदूषण का कारण बन रहा है कहीं नहीं। अब बैन कर रहे प्लास्टिक ग्रीन सिटी, वो प्लास्टिक यूज नहीं करना, पहले प्लास्टिक इतनी बड़ी बात थी, एक नया इन्वेंशन हुआ है, सारा का सारा क्रांति से आ रही है। तो हमारा हम जो सृष्टि करते हैं वो हमारी समस्या का कारण बन जाता है, क्योंकि हम अपने आप को सृष्टिकर्ता मानते हैं। तो ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम सृष्टिकर्ता नहीं है, इस सृष्टि करने की शक्ति भगवान द्वारा होती है। तो भगवान जब संहार करते हैं तो बताया गया भागवत जीसस करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि जो संघार हो रहा है तो संघार के सागर में गर्भवत सागर में गर्भवत विष्णु आराम से अनंत शेष जी की शैया पर आराम से लेटे हुए उनका ईश्वर है, आज बस तूफान आ रहा है और गर्भवत विष्णु आराम से लेटे हुए आनंद में, ये तमाम संघार का ईश्वर है। लेकिन भगवान बताते हैं ये संघार और सृष्टि करने का और पालन करने का जो एक ऐश्वर्य है इसका कारण क्या है, भगवान के चरणों में हमेशा लक्ष्मी के चरणों में सेवा करती रहती है और उस लक्ष्मी के लिए हम सब लड़ाई करते हैं। फिर भगवान भगवत विशेष करके बताते हैं कि उनके चरणों की ऐसी क्या महिमा है कि लक्ष्मी हमेशा के चरणों की सेवा करती रहती है और उनके चरणों में स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य इस सृष्टि से छुटकारा पा रहे हैं। इन सारे ऐश्वर्य जो भगवान के यशों का कारण है, क्योंकि भगवान विनम्रता वश बताते हैं कि भगवान कहते हैं ये प्रसंग आता है जय और विजय और जब चार कुमार श्राप देते हैं विद्यार्थी को श्राप देते हैं तो भगवान निकल कर बाहर आते हैं, जय विजय वार्ताल है भगवान के बैठक के जब चार कुमार खड़े हैं और वापस की मैच होती है और चार कुमार को जय विजय को श्राप देते हैं
भगवान बताते हैं। तो भगवान बताते हैं कि इन दो आत्मात्मा ने जो आपके साथ व्यवहार किया उसकी मैं धन्यवाद और मैं इसका राज देता हूँ, क्षमा भगवान क्षमा मानते हैं। भगवान ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं, भक्तों का गुणगान करते हैं और भगवान बताते हैं क्योंकि मैं अपने सेवकों का भक्त हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र हो गए हैं कि वे तुरंत सारे पापों को धो देते हैं और मुझे ये स्थिति प्राप्त हुई है कि स्वयं लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं है। हालांकि लक्ष्मी से मुझे कोई आसक्ति नहीं है और लक्ष्मी की सुंदरता को और लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए हर कोई लड़ाई रहता है, लेकिन लक्ष्मी हमेशा मेरे चरणों की सेवा करती रहती है। मेरा यह ऐश्वर्य क्यों है? क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं। जैसे कि साधारण शब्दों में किसी भक्त से पूछे कि आपके पास बहुत धन है, आपकी तो बहुत ऐश्वर्य है, तो क्या कहते हैं? सब ठाकुर की कृपा है। यहाँ भगवान क्या करें? सब भक्तों की कृपा है। लक्ष्मी जी मेरे चरणों की सेवा करती रहती है, हालांकि मैं लक्ष्मी से आसक्त नहीं हूँ, ये सब भक्तों की कृपा है। क्योंकि मैं भक्तों की सेवा करता हूँ इसलिए मेरे चरणों में इतनी शक्ति है, ये भगवान की विनम्रता है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन ये भगवान की विनम्रता है। तो यानी कि भक्तों का भी ये भाव होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी ऐश्वर्य है, जो कुछ भी योग्यता है, ये भगवान की कृपा है और उसका पूर्ण रूप से भगवान की और भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन आता है जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना प्रारंभ करते हैं तो ब्रह्मा जी के प्रत्येक राशि में प्रलय हो जाती है और जब ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं तो फिर से सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी फिर उस भ्रमित अवस्था में होते हैं। उनसे कहां बैठा हूं मैं, कि कमल कहां से आया, कहां से कमल उदय हो रहा है, कहां मैं स्थित हूं, आसपास पूरा अंधेरा है, जोर जोर से तूफान हवाएं चल रही होती है। ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से भ्रमित अवस्था में होते हैं। जैसे हम सुबह जब उठते हैं गहरी नींद से तो हमें पता नहीं होता मैं कब सोया था, कब उठा हूं, क्या कहां करना है। उस समय के भगवान परमात्मा जो हमारे हृदय स्थित है वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, तुम ये हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम ये करना है, फिर हमें ज्ञान है। इसी ढंग से जब ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता है, जो कि भगवान के अंश के अंश है, जब वो सुबह उठते हैं तो वो बिल्कुल अज्ञानता में होते हैं और भगवान उनके हृदय में बैठे हुए उनको बताते हैं तप 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 तप। तो शिला प्रभाव बताते हैं कि ब्रह्मा के प्रकांड में दिखाया जाए कि सुबह उठते ही हमें जप और तप करना चाहिए, तभी ब्रह्मा जी की सृष्टि का कार्य शुरू होता है। इसलिए हमें सुबह उठे उठते ही हमें जप और तप में लग जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी हजारों साल तक तपस्या करते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार और फिर वो सृष्टि प्रारंभ करते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी प्रतिदिन भगवान को स्मरण कराना पड़ता है कि तुम्हारी क्या स्थिति है और तुम्हें कैसे सृष्टि की रचना करनी है। जब नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं बोलते हैं कि आप इस पूरी सृष्टि को ऐसे जानते हैं जैसे आपके हाथ में अखरोट रखा हो, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आप बहुत तपस्या भी करते हो, इसका मतलब निश्चित रूप से आपके ऊपर कोई और है जिसने आपको शक्ति प्रदान की। तो ब्रह्मा जी उसके उत्तर में बताते हैं कि निश्चित रूप से भगवान के द्वारा प्रेरित होकर ही मैं उस सृष्टि की रचना करता हूं जिसकी पहले से ही भगवान ने रचना की है। आई डिस्कवर दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय भगवान के, जो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, उन्हें की प्रेरणा के द्वारा मैं उसको खोजता हूं जो कि पहले से ही है। सब कुछ पहले से ही है कि वो भगवान प्रेरणा प्रदान करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे कि बताते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की? ओलंपस ने। ओलंपस ने अमेरिका की खोज की, लेकिन अमेरिका तो पहले से ही था, लेकिन ओलंपस को क्या मिला? क्रेडिट मिल गया। तो ओलंपस जब भूल रहा था, उधर भटक रहा था, किसने उसके हृदय में उसको प्रेरणा दी कि अमेरिका कहां पर है, ये अमेरिका है। इसने से वास्को डी गामा आ रहे थे, उन्होंने किसी खोज की थी? हिंदुस्तान की। क्या हिंदुस्तान पहले से नहीं था? पहले से ही था, लेकिन भगवान ने उनको प्रेरणा प्रदान की। अब उनका नाम है, बहुत लोगों से वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोजा। अरे से तो इसे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसे अनशेष है, वो खींच रहे हैं, लेकिन वह नहीं, न्यूटन का प्रिंसिपल है, ग्रेविटेशन का। तो ये सब भगवान का पहले से ही है, भगवान भगवान प्रेरणा प्रदान करते हैं पर खोज कर पाते हैं। लेकिन जब हमें सृष्टि करने के लिए या कोई कार्यभार संभाला जाता है तो ब्रह्मा जी के उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भक्त का शनागत जीवात्मा का क्या व्यवहार होना चाहिए। ब्रह्मा जी भागवत विशेष कर्म के नौवें अध्याय में प्रार्थनाएं करते हैं कि आप सबके हितेशी हैं और आपकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना होती है, फिर भी आप हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं तो हम सृष्टि की रचना करेंगे। लेकिन आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि मैं झूठे अहंकार में ना आ जाऊं, मैं अपने आप को कभी भी सृष्टि का कर्ता ना मानूं। इसका प्रभाव बता रहे हैं कि इस झूठे अहंकार से बचने के लिए एकमात्र उपाय ये है कि हम हमेशा प्रार्थनाएं करते रहें और भगवान से सुरक्षा मांगते रहें। अन्यथा ये भक्ति का जो मार्ग है, इस भक्ति के मार्ग में सेवा करते हुए हमें बहुत से कार्य करने पड़ते हैं और बहुत से कार्य करते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम करता है, हम करने वाले हैं। तो केवल आध्यात्मिक चेतना ही हमें झूठे अहंकार से बचा सकती है। इस झूठे अहंकार के कारण ही हमारा पतन होता है। केवल आध्यात्मिक चेतना से हम बचे रह सकते हैं। हमें हमेशा सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार यदि यह चेतना आ जाए कि मैं करता हूं, सबका सब मेरे कारण हो रहा है, हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप सुनिए। ब्रह्मा हु इज ऑलवेज असिस्टेंट इन द मोड ऑफ क्रिएशन वांटेड टू रिमेन इन हिज एक्चुअल पोजीशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लॉर्ड इंस्टेड ऑफ बिकमिंग फक्ड अप बाय द थॉट ऑफ थिंकिंग हिमसेल्फ द क्रिएटर। दैट इज द वे ऑफ बिकमिंग डियर टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड रिसीविंग हिज मेडिटेशन। ब्रह्मा जी हमेशा इसी स्थिति में रहना चाहते थे कि मैं अपने आप को हमेशा भगवान का अंश मान लू, और इस स्थिति में रहने के लिए और मैं दोबारा जितने अहंकार से भ्रमित न हो जाऊं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और भगवान कहते हैं भगवान का प्रिय बनने के लिए और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है हमेशा हम प्रार्थना करते हैं। जब तक भगवान द्वारा हम सुरक्षित नहीं होंगे, हमारा हम पतन से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इसे प्रभा कहते हैं वन हैज टू प्रे कॉन्स्टेंटली, निरंतर हम प्रार्थनाएं करते रहे कि हम बचे रहे और इससे हमें भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सूरज से धारा निष्कल कर रूप में आती, जो आध्यात्मिक बात है ये तलवार की धार में चलने के समान है। तो हमें सीधे महाप्रभु के आंदोलन में कई तरह की सेवाएं मिलती हैं और उन सेवाओं को करते हुए हमारे अंदर कर्ता का भाव आ जाता है कि हमने ये किया। उससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि हम हमेशा प्रार्थना करते रहें, अपने आप को याद दिलाते रहें कि सारी की सारी शक्तियां भगवान के द्वारा हमें दी गई है। हम लोग जो प्रचार करते हैं कि बोलने की शक्ति भी भगवान के द्वारा दी गई है। जब नामन राय से इसी तरह महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे थे और नामन राय जो अपने सुंदर उत्तर दे रहे थे तो महाप्रभु ने उनकी प्रशंसा की। तो नामन राय ने क्या उत्तर दिया, मैं तो एक गिणा हूं और आप उसी ताक जा रहे हैं, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा बोलूं। तो जो एक प्रचारक है उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं एक निमित्त मां हूं, सब कुछ हो रहा है। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं सब कुछ हो रखा है, सृष्टि हो रखी है, आपने केवल निमित्त मात्र बना रहे हैं। हम प्रचार करने जाते हैं हम केवल निमित्त मात्र हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद की तात्पर्य उच्चिष्ट है, व्यास देव जी का और आचार्यों का और प्रभुपाद का उच्चिष्ट है, उसको सुनकर हम घुमा लेते हैं और बोलते देखो हमने क्या बोला, हमने क्या बोला इस सब और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस समय कौन सी बात बोलनी है, ये सब परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए कंट्रोल करते हैं। इसलिए प्रचारक है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो कुछ भी संदेश देने से पहले उसे बहुत प्रार्थनाएं करनी चाहिए जो यथारूप उस संदेश को दोहरा सके, वो श्रोताओं को कृष्ण का स्मरण करा सके, उसको केवल ये प्रार्थना करनी चाहिए। अक्सर हमें बोलना होता है तो हमें ये हमें प्रार्थना हो रही होती है कि मेरी इज्जत बच जाए, जो सारे लोग सुनने आएंगे मैं कुछ बुरा हूं, मेरी रिस्पेक्ट बनी रहे। भगवान अगर ऐसी प्रार्थना करेगा तो ठीक है, इतना डर लगेगा कि आपका आदर बना रहेगा। लेकिन असली प्रार्थना ये होनी चाहिए कि जो मेरा कर्तव्य है, जिस समय ड्यूटी है कि आपके संदेश को दोहराना और श्रोताओं को आपका स्मरण कराना, मैं इसमें संभव हो सकूं। अभी हम गीता मैराथन चल रही है, भगवत गीता लेके जाएंगे, विभिन्न मात्र बहुत सभी साथ विभिन्न मात्र बनाए जाए, सब कुछ हमारे पहले करके रखा हुआ है, हमें केवल क्या बनाए, विभिन्न मात्र बनना है।
लेकिन हम समझ रहे हैं कि हम सारा कैटल ले रहे हैं, हम कर रहे हैं, करने वाले कौन है? भगवान है, भगवान की वाणी है और भगवान की ही इच्छा है कि इसका पूरे विश्व में प्रचार हो, हम केवल निमित्त मात्र बनेंगे। तो इस ढंग से हम अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, प्रार्थना करके और ज्ञान को समझ कर। एक जीवात्मा का असली ऐश्वर्य ये है कि जीवात्मा हमेशा दास की स्थिति में रहे। दास दासा तो दास होना ये जीवात्मा का सबसे उत्तम ऐश्वर्य है, सबसे उत्तम स्थिति है। वृंदावन साधु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दास बनना ये जीव की सर्वोत्तम स्थिति है। हमने से जो पूरी दीक्षा हो जाती है उनके नाम के आगे दास हो जाता है, बस काम हो गया, दास हो गया। लेकिन दास की चेतना में हमेशा रहने का प्रयास करना है। और एक बार चंद्रमणि स्वामी महाराज मायापुर में लेक्चर दे रहे थे, बोले थे कि जीव का दास दासा में दास होना ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। केवल वास्तविक स्थिति नहीं है, ये हमारी केवल एकमात्र स्थिति है। दास दासा में दास हमारी केवल एकमात्र स्थिति है और यही हमारा ऐश्वर्य है कि अगर हम मनुष्य जीवन में इसको रियलाइज कर सकें, इसका साक्षात्कार कर सकें कि हम दासों के दासों के दासों के दास हैं, इस स्थिति में आने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। लेकिन बहुत जगह में हम बॉसों में बॉसों में बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन आजादी जगह में दासन और दासन और दास, ये हमारा असली ऐश्वर्य है। ये कोई इंसाइट की बात नहीं है। अगर सेवक यहाँ पे और दास हमें कोई दास के लिए पुकारता नहीं, विनम्रता भाई हमें अपने प्रभु रहकर पुकारते हैं प्रभु, लेकिन हमें अपने आप को प्रभु नहीं मान लेना चाहिए। वास्तव में मैं प्रभु, देखो मैं प्रभु आपके मुझे प्रभु कहता है, वास्तव में प्रभु शुरू शुरू में होता है कि हम पात्र आते हैं, हर किसी को प्रणाम करते हैं, हर किसी को इसमें ये प्रभु मुझे कुछ भी नहीं आता है, ध्यान का हूँ इतने दिनों होते हैं सबको प्रणाम करते हैं। तो हमें वास्तव में दासों में दासों में दास में जैसे दीक्षा में जाकर बड़े दास में दास नहीं सुख मैं दास हूँ, जब मैं दास होकर लोग प्रभु रहना शुरू करें प्रभु को शक्ति में जाती है मेरे को महाप्रभु माना शुरू करें, दास में दास से सीधा महाप्रभु माना। और हम फिर भगवान से कॉम्पिटिशन करते हैं, मैं भगवान से बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, बच कर रहे हैं। सुंदर हमें सुविधा मिली है कि हम ये प्रयास करते रहे दासान 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 दास, ये हमारा असली ऐश्वर्य है। और भगवान के ऐश्वर्य का हम गुणगान करें, जितना गुणगान एक तरीके सदा आए हमेशा भगवान का गुणगान करें। हमें कभी लोग बहुत सी मजा बात करेंगे, अक्सर लोग बोलते हैं चैन हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, उन्होंने बताया हैप्पी और नॉट हैप्पी चैन हरे कृष्णा, आप खुश है या नहीं खुश है आप भगवान का गुणगान, ये हमारा एक ही कर्तव्य है। हर परिस्थिति में जीवात्मा को भगवान का गुणगान करता है बस। तो इस ढंग से हम ये याद रख सकते हैं कि ये भगवान के ऐश्वर्य है और हम तो केवल दास है। जो भी हमारी योग्यता है, जो हमारे पास धन है, जो हमारे पास बुद्धि है, जैसी हमारी वाणी है, सब कुछ हमें संकीर्तन जगत में समर्पित करना चाहिए, सब कुछ। ये हमारे जीवन की भूमिका होगी। हरे कृष्ण।
तो
इसका उत्तर देते हैं कि शुद्ध चेतना से ही पॉसिबल होता है, झूठा एंडावरण होता है। और अक्सर लोग पूछते हैं कैसे संभव हो, इसकी संभव वाले से बताया था हमारे स्वतंत्रता का दुरुपयोग, और इसलिए प्रभाव कहते हैं हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, कभी भी पता नहीं पड़ सकता है, कभी भी हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं। अक्सर प्रभाव कहते हैं हम देखते हैं कि अच्छा चल रहा है, अचानक उसका पता अचानक कुछ हो जाता है, अचानक आप अपने आपको शरीर से मना शुरू, शरीर से पहचान करते ही सब कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। बहुत ही सावधान है, कभी ये बार बार हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए शिक्षक के बाद जैसे कर पूछा गया प्रभुपात आपके मार के प्रभाव में आएंगे तो मैं कभी कभी नहीं आ सकता, याद उसने प्रभाव नहीं होगा। इसके बाद प्रभाव ने क्या किया था, आठ बजे समय में प्रार्थना करें, इस वक्त मुझे क्या प्रार्थना किए, गौरव ने ये प्रार्थना की कि मैं कभी मार के प्रभाव में ना हूं,
आपके अंदर में आसान से ये बोला है तभी मैं बोल पाया क्योंकि मैं हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ कि नारायण के भाव में ना हो कभी मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। प्रमा बोलते हैं मुझे अपने शिष्यों से यही शिकायत है कि देव फ्लड विद माया, माया से कम ही कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ थोड़ा करके नहीं कुछ नहीं अपने बाप थोड़ी सी जगह कुछ नहीं हुआ थोड़े से नियम नहीं करते थे कुछ नहीं हुआ बहुत सावधान रहना चाहिए हमेशा प्रार्थना करती रहती है।
पता नहीं होता था कि कितने गलत है, बट मैंने कहते हैं अगर इसने कुछ गलत किया है तो दूसरा प्रश्न समझना पड़ेगा। चाहे हमें नहीं पता गाँव से शहर में आए और वेबसाइट पर रूल नहीं पता, बट अगर हम ब्राउज करेंगे तो हमें उसका पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर किसी को पता ही नहीं है और फिर भी वो गुजर रहे हैं और सोचते हैं लोग किसी को ना पता और जाने के लिए
तो उसके क्या सही थे। विषय प्रश्न ये है कि मनुष्य को क्या नाम नहीं रहना चाहिए, इसके साथ संग अध्ययन कर रहे हैं।
जितने भी भक्तों में ज्यादातर प्रार्थनाओं में है कि शशि के बाद में सबसे पहले जो है गुरुदान भगवान में भी जो है शायद उस अंदर इसमें शशि के बारे में और जानकारी रहती थी। और अभी ये मेरा प्रश्न बहुत मतलब बुनियादी प्रश्न है, हमने करना कैसे मतलब सृष्टि हम तो करनी सृष्टि करनी भगवान करनी फिर विभिन्न एलिमेंट बना कर भगवान बना दिए इस तरह से अगर सृष्टि करनी थी भगवान ने कर दी, हम जो सृष्टि करते हैं उसको उत्पाद नष्ट है करना है सृष्टि करने हम जानते हैं उनका हम क्या करें बहुत कुछ करने लाइफ में सारे इनका इनका विषय ये सब जानकारी भगवान ने सृष्टि की ब्रह्मा ने मेरी दोबारा ने सृष्टि की इससे जानकर हमें क्या फायदा होगा, हमें बहुत फायदा होगा क्योंकि बार बार हमें गलत समझ रहती है। मैं करता हूँ हम तो अपना खाना नहीं बचा सकते, हम अपने घर की बात को छोड़ दो, सूर्य का प्रकाश पानी अग्नि वायु सब भगवान द्वारा दी गई है, हमें मान सकें कि भगवान की शक्तियां कैसे सृष्टि की रचना होती है और कैसे झूठे अहंकार से सब कुछ उत्पन्न हुआ। झूठा अहंकार कारण है, झूठा का अहंकार एक उपकरण है, झूठा अहंकार एक प्रभाव है। हमें मान जाना चाहिए कि सारा का सारा भौतिक जो प्रगति हो रही है झूठे अहंकार ये सांख्यों में बहुत मदद करते हैं जाने के कैसे जीवात्मा इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए बार बार हमें याद रहना चाहिए, जब भी उनकी मामले में भगवान के समय प्रार्थना की नमा परिश्रम पाते ईश्वर करते थे अलक्ष्य सर होता ना अंतर होना तो कई बार ये बार बार रिमाइंड करना बहुत जरूरी है कि हम करता नहीं है सृष्टि के परम नियंत्रण एक एक अणु के होता है। इससे क्या होगा संविधानी हो जहां इस बात को बोलते हैं लोग में आते संविधान शुरू हो जाती है। हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, किसी को हम बहुत सुंदर देखते हैं धनमान देखते हैं, फिर भगवान का दिया उसको ऐश्वर्य है हमसे द्वेष करते हैं कि वो इतना बुद्धिमान क्यों है मैं क्यों नहीं, बोले बुद्धि भगवान ही प्रदान कर रहे हैं उसके बाद इतने स्किल्स है मेरे पास क्यों नहीं, हम ये एजेंसी करते रहते हैं इसी द्वेष में रहते हैं उसके बाद इतना धन है मेरे पास क्यों नहीं। जहां भी जिसके पास जो भी ऐश्वर्य है वो कृष्ण द्वारा वो कृष्ण का ही ऐश्वर्य, जिसके पास ये ऐश्वर्य है उसको दूसरे नहीं मेरा है ये कृष्ण है और दूसरे को उसे द्वेष नहीं करना चाहिए। बोले इस पर बहुत कृपया इस पर भगवान का देव है ऐश्वर्य है, मैं भी अपने आप को सही अलाइन करूंगा तो भगवान अपने सारे गुण मुझे दे देंगे, भगवान इसे उसे पालन करते हैं। अगर भगवान कह रहे हैं कि मेरा घर ऐश्वर्य लक्ष्मी मेरे चरणों की सेवा इसलिए कर रही है मेरे चरणों की मांगना इसलिए है क्योंकि मैं अपने भक्तों की सेवा कर समय है कि हम भी अपने भक्तों की सेवा करेंगे, हम अपने भगवान के खाते के अनुसार समझेंगे स्वतः ही ऐश्वर्य प्रभाव ऐश्वर्य। इसलिए इन सब चीजों को रिमाइंड करिए, शुरुआत है बुनियादी ज्ञान है, ये संबंध ज्ञान का है कि मैं जिस सृष्टि में हूं सृष्टि की रचना किसने की, अगर ये संबंध ज्ञान नहीं होगा आप इन्हें प्रेरणा नहीं कह सकते बाढ़ का संबंध बहुत संबंध है। इसीलिए कि हम पहुंचे सेवा कर रहा हूँ तो बहुत ही मतलब पहचान बात नहीं होती है इसके प्रति अनुभव कई अवकाश है भगवान से पहली बात नहीं है और कर देते हैं और करने का नहीं लगता कि कोई ऐसे हमारे संस्कृत में रहो
जहां हम अपने आपको भोक्ता मांग रहे हैं हम भगवान से कॉम्पीट कर रहे हैं, जहां हम इंद्रस्थी के प्रयास कर रहे हैं हम भगवान से कॉम्पीट कर रहे हैं, जहां हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं हम भगवान से कॉम्पीट कर रहे हैं। एक हमारी अज्ञानता है, हमें से इस दृष्टि में कौन ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैं बुरा हूं, हम लोग कहते मेरा मन साफ है, हम कोई किसी को भी पकड़ लो और मेरा मन तो साफ है, किसी का बुरा नहीं करता, मेरे से अच्छा कोई व्यक्ति है ही और मेरे अच्छा कोई व्यक्ति यहां पर स्टार्ट करते हैं जब भगवान के नाम, तो हम सब ये तो गलत कहने में है कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, वास्तव में भगवान से कॉम्पीट करते हैं, विदेश करके कोई नाम नहीं है।
Thank you.